اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم مصطفی محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما لبقیۃ اللہ فی الارضین و حجته علی العالمین، اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم وفقان المجید وقاله الحق وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن۔ سب سے پہلے تو میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کو آج کے عظیم الشان دن کی مناسبت سے، کہ جس دن حضرت امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی ولادت با سعادت کے موقع پہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیال تو یہ تھا کہ شاید میں ایک طولانی گفتگو کر سکوں، اور امام کے حوالے سے اور ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اچھی خاصی جو ہے وہ گفتگو کی جائے اور اس موضوع کو کھولا جائے، مگر یہ کہ شاید دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور اب جو ہے میرے پاس صرف 20 منٹ ہیں، لہٰذا یہ کہ میں ڈائریکٹ موضوع میں داخل ہو کے اور ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ کر کے بات کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی العزیز۔ عزیزان محترم، خداوند متعال نے ماہ مبارک رمضان کی جو فضیلت بیان کی، جو خود سید الشہور ہے، ایک ایسا عظیم الشان مہینہ کہ جو خود سید الشہور ہے، جس کی راتیں بابرکت ہیں، جس کے دن بابرکت ہیں، جس کی ہر لمحہ جو ہے وہ بابرکت ہے، ایسے مہینے کا جب تعارف کرایا تو فرمایا، اور اس کی تاریخ بیان کی تو فرمایا، الذی انزل فیہ القرآن، یعنی ماہ مبارک رمضان کا ایک ترہ امتیاز یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ قرآن کو نازل کیا، الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو نازل کیا گیا، اور قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت ہے۔ آخر کیوں کہ قرآن کے ذریعے سے جو ہے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو اجاگر کیا گیا، اس کی شاید ایک وجہ یہ رہی ہو، جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان کا عظیم الشان مہینہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ تربیت کا مہینہ ہے، انسان سازی کا مہینہ ہے، خود سازی کا مہینہ ہے، اور انسان اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے آیا ہے، اپنے آپ کو سوارنے کے لیے آیا ہے، خود سازی کے لیے آیا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان اپنی زندگی گزارنے نہیں آیا، بلکہ اپنی زندگی کو سوارنے آیا ہے، اسے سوارنا ہے۔ یہاں اس نقطے کے ذریعے سے میں اس بات کی وضاحت کروں کہ بعض دفعہ ماہ مبارک رمضان کو ضیافت اللہ کہا گیا، یہ مہینہ اللہ کی مہمانی کا ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا ہے کسی نے آپ کو مہمانی پہ بلایا ہو اور اس نے آپ کو وہاں بھوکا رکھا ہو، سارا دن آپ بھوکے ہیں، سارے دن آپ پیاس سے ہیں، نہ پانی کے قریب جا سکتے ہیں، نہ غذا کے قریب جا سکتے ہیں، آپ بہت سے کام جو روزانہ انجام دیتے ہیں اس مہینے کے اندر انجام نہیں دے سکتے، یہ کیسی مہمانی ہے، یہ کیسی میزبانی ہے جہاں پہ آپ کو بلایا گیا ہے، اللہ آپ کا میزبان ہے، اس پورے مہینے میں کہا گیا کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں، تو مہمان کو روکا گیا ہے کہ نہ پانی کے قریب جانا ہے، نہ غذا کے قریب جانا ہے، یہ کیسی مہمانی ہے۔ بعض دفعہ انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، تو میں یہاں پہ عرض یہ کروں گا کہ اس میں ایک ظریف نقطہ یہ ہے کہ انسان در حقیقت جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ہے انسان کا اور ایک روح انسان ہے، انسان در حقیقت وہ روح ہے کہ جو جس کی ہمیں تربیت کرنی ہے، جس کو ہمیں پروان چڑھانا ہے، اور یہ جو ہماری روح ہے جو اصل انسان ہے، اور یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ وہ مرکب ہے، یہ وہ سواری ہے جس کے اوپر انسانی روح جس کے ساتھ، جس مرکب کے ساتھ اس دنیا کے سفر کو طے کرتی ہے، اس سفر ارتقاء کو، سفر کمال کو طے کرتی ہے، اور پھر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے۔ अजीजान मोहतरम, ये जो रूह है, देखें आप, हम दो तरह के हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा हाथ है, मैं नहीं हूँ, ये मेरा हाथ है, ये मेरा कान है, ये मेरी नाक है, ये मेरी आंख है, मैं नहीं हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं और हूँ और मेरा हाथ अलग चीज है, मैं और हूँ मेरा कान अलग चीज है, मैं और हूँ मेरी नाक अलग है। इसका मतलब मैं अलग हूँ, मेरी चीजें अलग हैं। जो चीजें भी मैं के तहत आ जाएं वो मेरी हो जाती हैं। इसका मतलब वो जो असल इंसान है वो मैं इंसान है, वही रूह हकीकत इंसान है कि जो ये कहता है या ये कहती है कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा कान है, ये मेरी नाक है, वो रूह है इंसान की। रूह ना पकौड़े खाती है, रूह ना समोसे खाती है, रूह ना शरबत पीती है, रूह जो है ना वो इस किस्म की गजा इस्तेमाल करती है। कुरान ने भी कहा, इसी तरह से मासूमीन ने भी फरमाया, रिवायतें भी हैं कि हमने ये महीना ज़ियाफ़तुल्लाह का महीना है। तो ज़ियाफ़तुल्लाह के महीने में इंसान शायद ये समझ रहा था कि उसकी ज़ियाफ़त इन चीजों से की गई, ये चीजें अलग हैं। जिस्म की मेहमानी के लिए सिर्फ नहीं बुलाया गया था कि इंसान का सारा जोर जो है वो शरबत के ऊपर हो, वो पकौड़ों के ऊपर हो, वो समोसों के ऊपर हो, नहीं, हमने तुम्हें मेहमान बुलाया था, तुम्हारे जिस्म को मेहमान नहीं बुलाया कि जिसके लिए इंसान इंतजार करे कि मुझे भूखा रखा गया है और मुझे न शरबत की तरह, न पानी की तरह, इन चीजों से रोक दिया गया। आपको पानी की तरफ नहीं जाना, आपको गजा की तरफ नहीं जाना, आपको भूखा रखा गया है। तो फिर अगर ये महीना ज़ियाफ़तुल्लाह का है तो कोई दस्तरखान ऐसा मेरे लिए बिछाना चाहिए था क्योंकि मैं मेहमान हूँ। तो हम खुदा भी यही कहता है, हमने तुम्हें मेहमानी पे बुलाया था, तुम्हारे जिस्म को नहीं बुलाया था, तुम्हें बुलाया था। तुम रूह हो, रूह की गजा पानी नहीं है, रूह की गजा खाना नहीं है, रूह की गजा वो चीजें नहीं है जो हम खाते हैं, बल्कि रूह की गजा इल्म है, रूह की गजा हिदायत है। जो तुम्हारी रूह की गजा है वो हिदायत है। लिहाजा हमने इस महीने के अंदर तुम्हारी हिदायत का बेहतरीन बंदोबस्त किया और इसके लिए एक ऐसा अजीम शान दस्तरखान बिछा दिया है जिसे कुरान कहा जाता है। कुरान इसी महीने में नाजिल किया गया है। कुरान वो अजीम दस्तरखान है जो खुदावंद मुताला ने इस महीने में इंसानों की हिदायत के लिए बिछाया है। इसीलिए फरमाया अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, इसके अंदर वो दस्तरखान नाज़िल किया गया है जो रूह इंसान की ग़िज़ा बन के आया है। इसीलिए कुरान ने कहा हमने तुम्हें जो है इस महीने में अपना मेहमान बनाया है, तुम्हें बुलाया है, तुम रूह हो और रूह की ग़िज़ा जो है वो क्या है, दरहकीकत हिदायत है, वो इल्म है जिसके जरिए से इंसान इर्तिका पैदा करता है, जिसके जरिए से इंसान अपनी खुद साजी कर सकता है, अपने आप को बना सकता है। ये एक बात। दूसरी चीज ये कि इमाम हसन के हवाले से हम बात करना चाहें तो हम देखते हैं कि इमाम हसन की जहां बहुत सारी चीजें मैंने अर्ज की जो है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प दिखाई देती हैं अगर हम तारीख का मुताला करें। और हजरत इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह जो हैं वो अपनी सुल के हवाले से जहां मशहूर हैं वहां इसके अलावा इमाम हसन बेताज शुजा तरीन इंसान समझे जाते थे। उससे सुल से पहले के आप जितने वाकयात देखें वो एक भरपूर उस किस्म के जवान दिखाई देते हैं जिसके अंदर वो तमाम सिफतें पाई जाती हैं जो एक मजबूत जवान के अंदर पाई जानी चाहिए। इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को सैयद शबाब अहले जन्नत कह के खिताब किया है और जनाब इमाम हसन को जगह जगह उनका तारुफ कराया, उनकी सिफात का तारुफ कराया गया है। हजरत इमाम हसन जहां सुल के हवाले से बहुत ज्यादा पहचाने जाते हैं वो अपनी तदबीर के हवाले से बेनजीर इंसान दिखाई देते हैं। इसी वजह से आप देख लीजिए जंगे सिफीन का मरहला हो, जंगे जमल का मरहला हो, जंगे नहरवान का मरहला हो, इन तमाम जंगों की तदबीर में हजरत इमाम हसन आली मकाम दिखाई देते हैं और उनकी तदबीरों की वजह से, उनकी मजबूत प्लानिंग की वजह से जो है आलम इस्लाम ने फुतुहात पाई है। सिर्फ ये नहीं कि वो सुल के हवाले से ही मजबूत थे और वो अमन पसंद थे। हर इमाम अमन पसंद है, ऐसा ही है, जहां अमन की जरूरत हो वहां अमन पसंद दिखाई देते हैं। जहां आलम इस्लाम जंग चाहता हो तो फिर उनके यहाँ फरार नहीं है बल्कि वो मर्द मैदान दिखाई देते हैं, जैसे उनके वालिदे ग्रामी मर्द मैदान दिखाई देते हैं। इसी तरह अजीजान मोहतरम हजरत इमाम हसन ने बाज़ मकामात पे, बल्कि मैं यूं कहूँ इमाम हसन को बाज़ मकामात के ऊपर आप तन्हा क्यों दिखाई दिए, आप शिकस्त क्यों खाई गई। आलम इस्लाम की बात है, सिर्फ इमाम हसन की बात नहीं है, पैगंबर इस्लाम ने भी कई जगह पे शिकस्त खाई। बहुत सारी जगहों पे जाहिरी शिकस्त हम देखते हैं, जंगे अहद में जाहिरी तौर पे बहुत सारी जगहों पे शिकस्त हुई। इसी तरह से इमाम अली अलैहि सलाम बहुत सारी जगहों पे आपको हटना पड़ा पीछे। इसी तरह से हम आलम इस्लाम में देखते हैं, आखिर क्या वजूहत थी, क्यों अइमा पीछे हटना पड़ता था, क्यों रुकना पड़ता था, क्यों सुल लिखना पड़ता था। अगर सुल तहमीली हो तो भी बेकार है, और अगर जंग तहमीली हो तब भी बेकार है। इमामों को मजबूर किया जाता है, अइमा को मजबूर किया जाता है, जंग के ऊपर भी मजबूर कर दिया जाता है, और इसी तरह बाज दफा सुल के ऊपर भी मजबूर कर दिया जाता है। ये क्यों हो जाते हैं ऐसे हादसा? इसलिए कि जब इंसान अपनी तरबियत ना करे, जब इंसान तरबियत के पहलू से गाफिल हो और उसे पता ना हो, जब वालदैन तरबियत याफ्ता ना हो तो अपने बच्चों को सही तौर पे तरबियत नहीं कर सकते, सही नौजवान माशरों को तहवील नहीं दे सकते। हमें इस आलम इस्लाम को जबरदस्त किस्म के नौजवानों की जरूरत है। कौन से नौजवान? जो तरबियत याफ्ता होने चाहिए। ये फुकदान था आइम्मा की जिंदगी के अंदर, उनको इस किस्म के नौजवान ना मिल सके जो मुकम्मल तौर से तरबियत याफ्ता हो, जो बाबसीर हो, जो बाबसीरत हो, जो बेदार हो। आपने देख लिया, फिर अगर इमाम अली भी थे तो पीछे हटना पड़ा, क्योंकि तरबियत याफ्ता नौजवान नहीं है, बेदार नौजवान उनके पास मौजूद नहीं थे। ये बहुत जरूरी था कि जवान जहां जिस्मी तौर पे तरबियत याफ्ता हो, वहां रूही तौर पे उसे तरबियत याफ्ता होना चाहिए था, वहां इज्तिमाई तौर पे उसे तरबियत याफ्ता होना चाहिए था, वहां उसे सियासी तौर पे तरबियत याफ्ता होना चाहिए था। और ये अजीम पहलू थे तरबियत के, जिससे नफे वाले आगा नहीं थे, सही तौर पे जानना चाहते नहीं थे। दुनिया वो जो इमाम अली मकाम ने जुमला फरमाया, जब इंसान तरबियत याफ्ता नहीं होते तो फिर इंसान दुनिया परस्त हो जाते हैं, फिर अपने अजीम शान रहबरों को छोड़ के चले जाते हैं। अजीजाने मोहतरम, फिर उससे एक सूबे की क्या, एक मोहल्ले की हुकूमत को भी घाया नहीं जा सकता। लेकिन आपने देख लिया, अगर नौजवान तरबियत याफ्ता हो, अपनी तरबियत कर चुके हों, बेदार हो, बाशऊर हो, तो अगर हजारों साल की शहनशाह की होती है तो उसे भी घाया जा सकता है। और ये वही चीज थी जो आयतुल्लाह खुमैनी ने कही कि अगर कोई देखना चाहता है मुल्क ईरान के पास है क्या, आप यही फरमाया करते थे, माँ हर चेदारी मस कैबला दारी, हमने कैबला से सीखा, कैबला जिंदा क्यों है, कैबला को नौजवानों ने जिंदा रखा, कैबला के पास वो जवान मौजूद थे जो बेदार थे, जो जिंदा थे, जो अपने आप को पहचानवाना जानते थे, जो खुद साजी के मुजस्सम बने हुए थे, सर चश्मा थे, मंबा दिखाई देते थे, जिसके ऊपर इमाम हुसैन इफ्तिखार किया करते थे। इसी वजह से इमाम ने जिस शख्स का इंतखाब किया वो कर्बला का आली जवान इंसान था, कि आपने अली अकबर से ये कह के खिताब किया था, तकद्दम वलदी, ऐ बेटे आगे बढ़ो, इसलिए कि कर्बला ऐसे जवानों को चाहती है जो बेदार भी हों, जो यजीदियत को ढाना चाहते हों। अजीजाने महतम, हर इंसान चाहे वो जिंदगी के किसी भी मरहले में हो, वो यजीदियत को नहीं ढा सकता जब तक कि वो अपनी खुदसाजी ना कर सका हो, जब तक कि वो तबीयत याफ्ता ना हो। माह मुबारक रमजान बहुत अजीम शान महीना है अपनी तबीयत का। आयतुल्लाह खुमैनी यही कहते थे, माँ हर चेदारी मस कैबला दारी, हमने सब कुछ कैबला से लिया है। अगर कोई देखना चाहे कि मैंने कैबला से क्या लिया, तो सुनो, हमने कर्बला से वो लिया है जो कायनात में किसी से नहीं लिया। बेदार नौजवान हमारे पास हैं, बाशऊर इंसान हमारे पास हैं, बाबसीरत मिल्लत हमारे पास है, कर्बला वाली ख्वातीन हमारे पास हैं, नौजवान कर्बला हमारे पास है। याद रखो, किसी भी वक्त यजीद को ढाना होगा तो तुम्हें अपने अंदर अली अकबर जैसे लोग पैदा करने होंगे, अली असगर जैसे बच्चे पैदा करने होंगे, ज़ैनब कुबरा जैसी ख्वातीन पैदा करनी होंगी, उम्मे कुलसूम जैसी ख्वातीन पैदा करनी होंगी। जब माशरे के अंदर कैबला जहां पे वजूद पैदा कर ले, वहां पे यजीदियत सर नुगु हो जाती है। अजीजाने मोहतरम, नौजवानों के लिए, और अगर ये एक अलमिया था हर दौर का, आपने देख लिया नौजवान अलग होते हुए दिखाई दिए आइम्मा के साथ, क्योंकि बाबसीरत नहीं है, दो दो टके में बिक जाते हैं। आपने देख लिया अबैदुल्लाह इब्ने अब्बास जैसा इंसान, जो बर्जस्ता तरीन इंसान था, जब इंसान अपनी तबीयत ना करे 30,000 फौज को लेकर इमाम से जुदा हो जाता है, ये अदम तबीयत का नतीजा है। बेशऊर इंसान है, फिर अपने रहबर को छोड़ देते हैं, वो फिर परवाह नहीं करते, आलम सियासत में कदम नहीं रखते, वो शायद ये समझते हैं कि इबादतें मस्जिदें, और अगर आज हम चाहें तो शायद आजादारी, और बस काफी है ये नहीं, हर वक्त जब भी यजीदियत ललकारे नौजवान को मैदान में होना चाहिए। अगर नौजवान इस तरह से अपनी तबीयत करे, उन पहलुओं पे वालदैन की नजर हो कि किन पहलुओं के ऊपर हमें अपनी तबीयत करनी है, तो हम हर दौर के यजीदियत को ढा सकते हैं और हम हर दौर के यजीद को ललकार सकते हैं। वरना आपने देख लिया, क्या आज यजीद नहीं है? यजीद मौजूद है, यजीदियत बरसर इख्तदार नहीं है, तो फिर कहां चले गए? आखिर वो मिल्लतें कहां चली जाती हैं? देखा आपने, छोटे छोटे मौजूदात के ऊपर मुसलमानों में तफरका पैदा कर दिया जाता है। एक काफियों की हमेशा से साजिश यही रही है, मुसलमानों में तफरके फैलाएं, मोमिनीन में तफरके फैलाएं, तंजीमों में तफरके फैलाएं, अंजुमनों में तफरके फैलाएं। अजीजान महतम, बेदारी की जरूरत है, शऊर की जरूरत है। नौजवान कौन है? जहां तक 18 साल का नौजवान कहते हैं, यहां मैं एक लफ्ज की इजाफा वजाहत करता चलूं, जवानी के लिए कोई जरूरी नहीं है कि 18 साल हो, जवानी के लिए कोई जरूरी नहीं है कि 25 साल के हो। हाँ, ये जवान हमें चाहिए, जवान इनको भी कहते हैं, लेकिन पैगंबर ने इस्लामी तालीमात के अंदर जो लफ्ज जवान है, जो लफ्ज शबाब है, जो लफ्ज फतह है, वो 18 साल के लिए इस्तेमाल नहीं किया, 19 साल वाले के इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जवान वो है तालीमात इस्लामी के अंदर जिसके इरादे मजबूत हो, जिसके इरादे जवान हो, जिसकी फिक्र जवान हो, जिसकी बसीरत जवान हो, और जिसके पास ये ना हो, फिर वो 18 साल ही का क्यों ना हो, वो इस्लामी तालीमात में जवान नहीं है। इसीलिए पैगंबर ने अज़ीम शान ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदे शबाब अहले जन्ना, ये जवानाने जन्नत के सरदार हैं। ये जन्नत में जाने वाले कौन? क्या 18 साल के लोग होंगे, 19 साल के लोग होंगे, 20 साल के लोग? नहीं नहीं, ऐसा हर जगह नहीं है। मुस्लिम बिन औसजा जैसा इंसान भी जन्नत में होगा, सलमान फारसी जैसा बूढ़ा भी जन्नत में होगा, अबू जर जैसा बूढ़ा भी, तो फिर क्या ये जवान नहीं है? नहीं, जवान है, मफहूम शबाब समझ में नहीं आया। शबाब उसे कहते हैं जो इंसान अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल कर ले, जो अपनी खुशसाज़ी कर ले, जवान उसी को कहते हैं। इसी वजह से आपने देख लिया, 80 साल का बूढ़ा जो दुनिया के तमाम जवान ना कर सके, वो 80 साल के बूढ़े ने करके दिखा दिया और कयाम ऐसा अज़ीम किया, यजीदियत को सर नबू कर दिया। जवान इसी को कहते हैं, जवान इसी को कहते हैं जिसके इरादे मजबूत हो, जिसकी कुव्वत मजबूत हो, जिसकी फिक्र जवान हो। इसीलिए आयतुल रहबर इंकलाब फरमाते हैं, लकत असबत अल इमाम अल खुमैनी अन अल इस्लाम हयुन व यस्तती अन यकुना असासन लिल निजाम अल इजतिमाईया। इमाम खुमैनी ने यह साबित कर दिया पूरी दुनिया के लिए, जहां पूरी दुनिया के निजाम बातिल हो गए थे, जहां पूरी दुनिया के सिस्टम बातिल हो गए थे, नौजवान खत्म हो गए थे, बेदार लोग बेदार न रहे थे, खरीद लिए गए थे, ऐसे आलम में जहां इस्लाम को सरनगू किया जा रहा था। लकत असबत अल इमाम अल खुमैनी अन अल इस्लाम हयुन, खबरदार इस्लाम को मुर्दा कहने वालों, इस्लाम जिंदा है। व यस्तती अन यकुना असासन लिल निजाम अल इजतिमाईया, और इस्लाम नाबूद ही नहीं है, इस्लाम मिटा नहीं है, इस्लाम कमजोर नहीं हुआ, आज भी इस्लाम के अंदर वो ताकत मौजूद है कि पूरी दुनिया की सरबराही कर सकता है। सिर्फ रहबरों की जरूरत है, बेदार मिल्लतों की जरूरत है, नौजवानों की जरूरत है। अगर ये चीजें हमारे पास मौजूद हो, हम अपने रहबर के ताबे हूं। और मैं यहाँ पे ये अर्ज कहूंगा, इसी वजह से कभी न शख्सियत परस्त होना चाहिए, न तंजीम परस्त होना चाहिए, न अंजुमन परस्त होना चाहिए, बल्कि हमेशा देखना ये चाहिए कि हक कहाँ पे है। जहां पे हक हो आपको वहां पे होना चाहिए। जवानी इसी को कहते हैं, अजीजान महतम, शबाब इसी को कहते हैं, जहां पे हक दिखाई दे आपको उसी तरफ चलना चाहिए। अगर हम इन चीजों को मयार बना लेंगे तो फिर कोई वजह नहीं है कि हम किसी भी मैदान के अंदर जो है वो शिकस्त खा जाए। जनाबे डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी का तुर्रे इम्तियाज यही था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी मयार के ऊपर गुजारी है। उन्होंने कभी भी एक ऐसा अज़ीम-उश-शान इंसान, जो उस अज़ीम-उश-शान इंसान का तबीयत आफ्ता था जिसे आयतुल्लाह खुमैनी कहते हैं, उसने उस शख्स के ऊपर अपने इतने गहरे असर छोड़े थे कि आज पाकिस्तान के नौजवानों पे अगर पाकीज़गी दिखाई देती है, अगर उनके अंदर खुशसाज़ी दिखाई देती है, ये डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी की अज़ीम-उश-शान शख्सियत का असर है। हम में से हर शख्स को डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी होना चाहिए, ताकि हम नौजवानों के ऊपर, ताकि आइंदा मिल्लतों के ऊपर अपने गहरे असर छोड़ सके। अजीजान महतम, मैं आईएसओ, मैं इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नौजवानों को आज के दौर में भी सलाम पेश करता हूँ। کیوں؟ اس لیے کہ تربیت کے وہ اصول جو اسلام نے بتائے ہیں وہ ان کے اندر بہت ہی اچھی طرح دکھائی دے سکتے ہیں۔ آج کے نوجوان نے جہاں اجتماع میں آنے کی جہاں اجتماع میں آتے ہوئے نوجوان ڈرتا تھا، جہاں سیاست میں آتے ہوئے ڈرتا تھا، جہاں میدان میں آتے ہوئے ڈرتا تھا، جہاں تعلیم کے میدان میں پیچھے دکھائی دیتا تھا، امامیہ اسٹوڈنٹ نے ہر میدان میں آنے کے بعد یہ ثابت کر دیا اور پوری دنیا پہ یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، آج بھی نوجوان زندہ ہے اور نوجوان بیدار ہے۔ صحیح رہبر کی ضرورت ہے اور صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بار الہ ہم سب کو سیرت حضرت امام حسن مصطفیٰ سلام اللہ علیہ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہم سب کو شعور بیداری اور عظیم الشان نوجوان سے ہمیشہ مالا مال فرمائے۔ بار الہ تمام مومنین کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے انشاءاللہ۔ امام عصر کے ظہور میں بار الہ تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔